कल तक हम बाणनवत में जो ये हुआ था, लाक्षा गृह में आग लगाकर पांडवों ने वहां से निकल गया और वहां एक गीलनी अपने पांच बच्चे को लेकर भी आए थे और वो एकदम बहुत खाने पीने के बाद सो गया वहां पर। और जब आग लग गया तो किसी को पता ही नहीं था कि वो लोग भी वहां था, तो दैववश वो लोग जल गए। तो पांडवों ने वहां से जो भील बनाया हुआ था सुरंग उससे निकल गया, निकलकर गंगा के तट पर आ पहुंचा। तो जब गंगा के तट पर आया तो देखा कि वहां एक व्यक्ति उन्हीं का प्रतीक्षा कर रहा। तो बताया कि विदुर जी ने उनको भेजा है गंगा पार करवा। तो उसी समय विदुर का भेजा हुआ एक विश्वास पात्र मनुष्य पांडवों के पास आया, अपने पांडवों का विदुर को बतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा, मैं विदुर जी का विश्वास पात्र सेवक हूँ, मैं अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझता हूँ। आप विदुर जी के कथानुसार शत्रुओं पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे, ये नौका तैयार है, आप इस पर चढ़कर गंगा पार हो जाएंगे। तो ऐसे उस व्यक्ति ने गंगा को पार कर दिया। ये जगह बहुत सुंदर है, ये मैं पाठ कर रहा हूँ कि इस समय बाणनावत में क्या हो रहा है। इधर बाणनावत में पूरी रात बीत जाने पर सारे पूर्ववासी पांडवों को देखने के लिए आए। आग बुझाते बुझाते उन लोगों को मालूम हुआ कि ये घर लाख का बना है और मंत्री पुरोचन भी इसमें जल गया। उन्होंने निश्चय किया कि पापी दुर्योधन का ही ये षड्यंत्र था, अवश्य ही ये बात धृतराष्ट्र की जानकारी में हुई है। भीष्म विदुर और दूसरे कौरव भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे। आओ हम लोग धृतराष्ट्र के पास संदेश भेज दे कि तुम्हारा मनरथ पूरा हो गया, आप तुम्हारे करतूत से पांडव जलकर मर गए। जब सब लोग आग हटाकर देखने लगे तो अपने पांचों पुत्रों के साथ मरी भीलनी मिली। उन लोगों ने उन्हें पांचों पांडव और कुंती समझा। सुरंग खोदने वाले मनुष्य ने घर साफ करते करते राख से सुरंग पाट दी। जो सुरंग तैयार करने वाला जो था वो राख से सुरंग को बुझा दिया ताकि किसी को पता न चले कि सुरंग से ये लोग भाग गए। पूर्ववासियों ने ये संदेह धोकर, अच्छा इसलिए किसी को भी उसका पता न चल सका, पूर्ववासियों ने यह संदेश धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर भेज दिया। और देखिए जो दुराचारी होता है उसका मनोभाव कैसा होता है, कितना सुंदर वर्णन है। ये अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर ऊपर से बहुत दुख प्रकट किया। वे विलाप करने लगे, हाय हाय पांडव और उनकी माता के मरने से मुझे पांडु की मृत्यु से भी बढ़कर दुख हो रहा है। उन्होंने कौरवों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र ही शीघ्र बाणनावत में जाकर पांडवों और उनकी माता का विधि पूर्वक अंत्येष्टि क्रिया संस्कार करो। पूर्वचन के भाई बंधु भी वहां जाकर उसका क्रिया कर्म करे। पांडवों का कर्म इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाए जिससे उन्हें सदगति प्राप्त हो। सब जाति भाइयों और धृतराष्ट्र ने विलाप करके पांडवों की तिलांजलि दी। पूर्ववासियों ने उनकी दुर्घटना पर शोक शोक प्रकट किया। विदुर ने सब हाल मालूम मालूम होने पर भी थोड़े बहुत सहानुभूति प्रकट की। इधर पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय नींद के मारे सबकी आंखें बंद हो रही थी। सभी थके और प्यासे थे। घन जंगल था, दिशाओं का पता नहीं चलता था। यद्यपि पुरोचन जल गया था, फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था। इसलिए युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने फिर सबको पूर्ववत लाद लिया और तेजी के साथ चलने लगे। भीमसेन इतने भीषण वेग से चल रहे थे कि सारा वन कपता हुआ सा जान पड़ता था। इस समय पांडव लोग प्यास, थकावट और नींद से बड़े बेचैन हो रहे थे। उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। वो ऐसे घोर वन में जहां पहुंचा जहां पानी का कहां पता न था। इस समय कुंती ने अत्यंत त्रिषातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की। तब भीमसेन ने उन सबको एक बट वृक्ष के नीचे उतारकर कहा, तुम लोग थोड़ी देरी यहां विश्राम करो, मैं जल लाने के लिए जा रहा हूं। निश्चय ही यहां से थोड़ी दूर पर कोई बड़ा जलाशय हो, तभी तो जल में रहने वाले सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तो तब भीमसेन सारस पक्षी के ध्वनि का अनुसरण करते हुए वो जलाशय में गया और जलाशय में जाके नहाया, पानी पिया और पानी पीने के बाद अपना अपने दुपट्टे में पानी भर कर ले आए। तो ये आप सवाल हो सकते ऐसे करते हैं कि पानी से भिगा के लेते हैं और तो जब दुपट्टे को निगलते हैं तो उसको पानी। जब भीमसेन वहां पहुंचा तो देखा कि वट वृक्ष के नीचे उनकी माता और सब भाई सो गए हैं। वे दुख और शोक से भरकर उन्हें बिना जगाए ही मन कहने लगा। बहुत सुंदर यह वर्णन है। मेरे लिए इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या होगी कि मैं आज अपने उन भाइयों को जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी खुली जमीन पर सोते देख रहा हूं। मेरी माता वसुदेव की बहन और कुंती राज की पुत्री हैं। वे विचित्र वीर्य जैसे सुखी पुरुष की पुत्र वधु, महात्मा पांडु की पत्नी और हमारे जैसे पुत्र की माता है, फिर भी खुली धरती पर लुढ़क रही है। मेरे लिए इससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी कि जिन्हें अपने धर्म पालन के फल स्वरूप तीनों लोगों का शासक होना चाहिए, वे युधिष्ठिर थक कर साधारण पुरुष की भांति जमीन पर लेटे हुए हैं। हाय हाय, आज मैं अपनी आंखों से वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम सुंदर नररत्न अर्जुन और देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान रूप संपत्ति में सबसे बड़े चरे नकुल और सहदेव को आश्रयहीन की तरह वृक्ष के नीचे नींद लेते देख रहा हूं। दुरात्मा दुर्योधन ने हम लोगों को घर से निकाल दिया और जलाने का प्रयत्न किया, किंतु भाग्यवश हम लोग बच गए। आज हम वृक्ष के नीचे हैं, कहां जाएंगे, कहां भोगेंगे, क्या भोगेंगे इसका पता नहीं। आहा, पापी दुर्योधन सुखी हो ले, युधिष्ठिर मुझे तेरे वध करके लिए आज्ञा नहीं देते, नहीं तो मैं आज तुझे मित्र और कुटुंबियों के साथ जमराज के हवाले कर देता। अरे पापी, जब युधिष्ठिर तुझ पर क्रोध नहीं करता तो मैं क्या करूंगा। अच्छा देखिए, ये यहाँ भाई के प्रति, बड़े भाई के प्रति कितना श्रद्धा। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि उसको ऐसा मत करना, तो उसको बड़े मार, नहीं तो भीमसेन का क्रोध इतना इतना प्रबल था कि वो उस क्रोध की मारे सर्वलोक तक भी वो खार खार कर सकता। भीमसेन क्रोध से उतावले हो रहे थे, सांस लंबी चल रही थी और वे हाथ से हाथ पीस रहे थे। अपने भाइयों का निश्चिंत सोते देखकर वे फिर सोचने लगे कि हाय हाय, जहां से थोड़ी सी दूर पर बारनावत नगर है, यहां तो बड़ी सावधानी से जगना चाहिए था, फिर भी ये सो रहे हैं। अच्छा, मैं ही जागूंगा। हाँ, तो जल का क्या होगा, अभी थके मांदे हैं, जब जागेंगे तब पी लेंगे। ये सोचकर स्वयं भीमसेन जाग कर पहरा देने लगे। जिस वन में युधिष्ठिर आदि सो रहे थे, वहां हिरिम्बा नाम का एक बहुत भयंकर राक्षस भी रहता था। तो एक साल वृक्ष के ऊपर बैठकर हिरिम्बा ने ऐसा उसको ये मिला, मनुष्य शरीर का सुगंध मिला और वो सोचने लगा कि आज भूख भी लगा है और खाने के लिए मनुष्य का मांस भी मिल जाए। ये सोचकर उनके मुंह में पानी आने लगा। वो बड़ा क्रूर पराक्रमी एवं मांस भक्षी था। उसके शरीर का रंग एकदम काला, आंखें पीली और आकृति बड़ी भयानक थी। दाढ़ी मूछ और सिर के बाल लाल लाल थे तथा बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत भीषण था। उस समय उसे भूख लगी थी, मनुष्य की गंध पाकर उसने पांडव की ओर देखा और फिर अपनी बहन हिरिम्बा से कहा, बहन, आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का सुयोग दिखता है। जीभ पर बार बार पानी आ रहा है। आज मैं अपनी दाढ़े इतने शरीर में डुबा दूंगा और ताजा ताजा गर्म खून पीऊंगा। तुम इन मनुष्य के मारकर मेरे पास ले आओ, तब हम दोनों इन्हें खाएंगे और ताली बजा बजा कर नाचेंगे। अपने भाई का आज्ञा मानकर वो राक्षसी बहुत जल्दी जल्दी पांडवों के पास पहुंची। उसने जाकर देखा कि कुंती और युधिष्ठिर आदि तो सो रहे हैं, लेकिन महाबली भीमसेन जाग रहे हैं। भीमसेन के विशाल शरीर और परम सुंदर रूप को देखकर हिरिम्बा का मन बदल गया और वो सोचने लगी, इनका वर्ण श्याम है, बाहें लंबी हैं, सिंह के समान कंधे हैं, शंख की तरह गर्दान और कमल से सुकुमार नेत्र हैं, रोम रोम से छवि छिटक रही है, अवश्य ये मेरे पति होने योग्य है। मैं आपके अपने भाई का पूर्ण बात नहीं मानूंगी, क्योंकि भातृ प्रेम से भर गए। क्योंकि भातृ प्रेम से बढ़कर पति प्रेम है। यदि इन्हें मारकर खाया जाए तो थोड़ी देर कर हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परंतु इनके जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षों तक सुख भोग कर सकती हूँ। यह सोचकर हिरिम्बा ने मनुष्य स्त्री का रूप धारण किया और धीरे धीरे भीमसेन के पास गई। दिव्य गहने और वस्त्रों से भूषित सुंदरी हिरिम्बा ने कुछ संकोच के साथ मुस्कुराते हुए पूछा, पुरुष शिरोमणि आप कौन, कहां से आए हैं, ये सोने वाले पुरुष कौन हैं, ये बड़ी बूढ़ी स्त्री कौन है, ये लोग इस घोर जंगल में घर की तरह निश्चिंत होकर सो रहे हैं, इन्हें पता नहीं कि इस बड़े बड़े इससे बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और हिरिम्बा राक्षस तो पास ही है, मैं उसकी बहन हूँ, आप लोगों का मांस खाने की इच्छा से ही उसने मुझे यहाँ भेजा है, मैं आपको देवोपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ, मैं आपसे शपथ पूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसी को अब मैं अपना पति नहीं बना सकूंगी, आप धर्मज्ञ हैं जो उचित समझे करे, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए, मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी और हम दोनों सुख से पर्वतों की गुहा में निवास करूंगी, मैं स्वेच्छानुसार आकाश में विचर सकती हूँ, आप मेरे साथ अतुलनीय आनंद का उपभोग कीजिए। भीमसेन ने कहा, अरे राक्षसी, मेरी माँ, बड़े भाई और छोटे भाई खुद से सो रहे हैं, मैं इन्हें तो छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं, और तेरे साथ काम क्रीड़ा करने के लिए चला चलूं, ये भला कैसे हो सकता। हिरिम्बा ने कहा, आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूंगी, आप इन लोगों को जगा दीजिए, मैं राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन बोले, वाह वाह, ये खूब रही, मैं अपने सुख से सोए हुए भाइयों और माँ को दुरात्मा राक्षस के भय से जगा दूं, जगत का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गंधर्व मेरे सामने ठहर नहीं सकता, सुंदरी तुम जाओ या रहो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उधर राक्षस राज हिरिम्बा ने सोचा कि मेरे बहन को गए बहुत देर हो गई, इसलिए उस वृक्ष से उतरकर वो पांडव की ओर चला, उस भयंकर राक्षस को आते देखकर हिरिम्बा ने भीमसेन को कहा, देखिए देखिए वो नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है, आप मेरे बात सुनिए, मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ, मुझमें राक्षस बल भी है, मैं आपको और इन सबको लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन बोले, सुंदरी तू डर मत, मेरे रहने कोई राक्षस इनका बाल वाका नहीं कर सकता, मैं तेरे सामने उसे मार डालूंगा, देख मेरी ये बाह और मेरी ये जान, ये क्या कोई भी राक्षस इनसे पिस जाएगा, मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार न कर। इस तरह की बातें हो ही रही थी कि उन्हें सुनता हुआ हिरिम्बा वहां आ पहुंचा, उसने देखा कि मेरे बहन तो मनुष्य का सब सुंदर रूप धारण करके खूब बंठन और सज धज कर भीमसेन को पति बनाना चाहती है, वो क्रोध से तिलमिला उठा और बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर कहने लगा, अरे हिरिम्बा, मैं इनका मांस खाना चाहता हूँ और तू इसमें विघ्न डाल रही है, धिक्कार है, तूने हमारे कुल में कलंक लगा दिया, जिनके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, देख मैं तेरे सहित उन्हें अभी मार डालता हूं। ये कहकर हिरिम्बा दांत पिसता हुआ अपनी बहन और पांडवों की ओर झपटा। भीमसेन ने उसे आक्रमण करते देखकर डांटते हुए कहा, ठहर जा मूर्ख, तू इन सोते हुए भाइयों को क्यों जगाना चाहते हैं, तेरी बहन ने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया, हिम्मत हो तो मेरे सामने आ, तेरे लिए मैं अकेला ही काफी हूं, तू स्त्री पर हाथ न उठा। भीमसेन ने बलपूर्वक हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वे उसके बाह से बहुत दूर घसीट ले गए, क्योंकि भीमसेन नहीं चाहता था कि लड़ाई वहां हो तो माँ और भाई लोग जाग जाएंगे, तो इसलिए उसको दूर ले गए। तो इसी प्रकार एक दूसरे को कसकते मसकते तनिक और दूर चले गए और वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर बरसते हुए लड़ने लगे। उनकी गर्जना से कुंती और पांडवों की नींद खुल गई। उन लोगों ने आंख खुलते ही देखा कि सामने परम सुंदरी हिडिंबा खड़ी है। उसके रूप सौंदर्य से विस्मित होकर कुंती ने बड़ी मिठास मिठास के साथ धीरे धीरे कहा, सुंदरी सुंदरी तुम कौन हो, यहाँ किस लिए कहाँ से आई हो? हिडिंबा ने कहा, ये जो काला काला घोर जंगल है वही मेरा और मेरे भाई हिडिंबा का वासस्थान है। उसने मुझे तुम लोगों को मार डालने के लिए भेजा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हारा परम सुंदर पुत्र को देखा और मोहित हो गई। मैंने मन ही मन उनकी पति मान लिया और उन्हें यहाँ से ले जाने की चेष्टा की, परंतु वे विचलित नहीं हुए। मुझे देर करते देखे देख मेरा भाई स्वयं आए यहाँ चला आया और उसे तुम्हारे पुत्र घसीटते हुए बहुत दूर ले गए हैं। देखो इस समय वे दोनों गरजते हुए एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। हिडिंबा की ये बात सुनते ही चारों पांडव उठकर खड़े हो गए और देखा कि वे दोनों एक दूसरे को परास्त करने की अभिलाष से भिड़े हुए हैं। भीमसेन का कुछ दवने देखकर अर्जुन ने कहा, भाई जी कोई डर नहीं, नकुल और सहदेव माँ की रक्षा करती हैं, मैं अभी इधर राक्षस को मार डालता हूँ। भीमसेन बोला, भैया अर्जुन चुपचाप खड़े रहकर देखो, घबराओ मत, मेरी बाहों के भीतर आकर ये बच नहीं सकता। अब भीमसेन ने क्रोध से जल घूमकर आंधी की तरह झपट कर उसे उठा लिया और अंतरिक्ष में 100 बार घुमाया। भीमसेन ने कहा, रे राक्षस, तू व्यर्थ के मान से झूठ मूठ इतना हट्टा कट्टा हो गया था, तेरा बढ़ना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यर्थ। जब तेरा जीवन ही व्यर्थ है तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिए। इस प्रकार कहकर भीमसेन ने उसे जमीन पर दे मारा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अर्जुन ने भीमसेन का सत्कार करके कहा, भाई जी यहाँ से वारणावत नगर कुछ बहुत दूर नहीं है, चलिए यहाँ से जल्दी निकल चले, कहीं दुर्योधन को हमारा पता न चल जाए। इसके बाद माता के साथ सब लोग वहां से चलने लगे। हिडिंबा राक्षसी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। हिडिंबा भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। तो राक्षसी को पीछे आते देखकर भीमसेन ने कहा, हिडिंबे मैं जानता हूं कि राक्षस मोहिनी माया के सहारे पहले बैर का बदला लेते हैं, इसलिए जा तू भी अपने भाई का रास्ता ना। युधिष्ठिर ने कहा, राम राम, क्रोध वश होकर भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे शरीर की रक्षा से भी बढ़कर धर्म की रक्षा है, तुम धर्म की रक्षा करो। जब इसके भाई को तुमने मार डाला तब ये हम लोगों का क्या बिगड़ सकती है? इसके बाद हिडिंबा कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुंती से बोली, आर्जे आप जानती हैं कि स्त्रियों की कामदेव की पीड़ा कितनी दुस्तर होती है, मैं आपके पुत्र के कारण बहुत देर से व्यथित हो रही हूँ, आप मुझे सुख मिलना चाहिए। मैंने आपने सगे संबंधी कुटुंबी और धर्मों को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को पति के रूप में वरण किया है, मैं आप और आपके पुत्र दोनों के स्वीकार प्राप्त करने योग्य हूँ। यदि आप लोग मुझे स्वीकार न करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूँ। तो जब हिडिंबा ने ऐसे बोली तो माता कुंती माता ने इनको बोला कि तुम इसको आदि करो, और युधिष्ठिर भी उनको बताया युधिष्ठिर को बताया, हिडिंबे तुम्हारा कहना ठीक है, सत्य का कभी उल्लंघन मत करना। प्रतिदिन सूर्यलोक सूर्यास्त प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा से सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। सायंकाल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुंचा देना। राक्षसी के स्वीकार कर लेने पर भीमसेन ने कहा, मेरे एक प्रतिज्ञा है, जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा, पुत्र हो जाने पर नहीं। हिडिंबा ने यह भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद वो भीमसेन के साथ लेकर आकाश मार्ग से उड़ गए। अब हिडिंबा अत्यंत सुंदर रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से आभूषित हो मीठी मीठी बातें करती हुई पहाड़ों की चोटियों पर, जंगलों में, तालाबों में, गुफाओं में, नगरों में और दीप भूमियों में भीमसेन के साथ विहार करने लगी। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ। विकट नेत्र, विशाल मुख, नुकीले कान, भीषण शब्द, लाल होंठ, तीखी दाढ़ी, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायाओं का खजाना। वो क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बड़ा हो गया और तत्काल ही जवान, सर्वशास्त्रविद और वीर हो गया। जन्मेजय राक्षसी तुरंत गर्भ धारण कर लेती, बच्चा पैदा कर देती और चाहे जैसे रूप बना लेती है। तो घटोत्कच का जन्म हुआ। जन्म होते हुए विशाल हो गया, विशाल शरीर प्राप्त हुआ, भयंकर रूप उसका था और वो शास्त्रविद भी था। जन्म के साथ तो बच्चों की उसका घट मतलब सिर में उत्कर्ष लोम बाल नहीं था, इसलिए उसका नाम वह हो गया घटोत्कच। तो घटोत्कच माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं, आप निसंकोच बतलाइए कि मैं आपके क्या सेवा करूं। कुंती ने कहा, बेटा तू कुरु वंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन का समान है। इन पांचों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है, इसलिए समय पर इसकी सहायता करना। कुंती के इस प्रकार कहने पर घटोत्कच ने कहा, मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी तथा विशालकाय हूं। जब आप लोगों की कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें, मैं आ जाऊं। ये कहकर उसने उत्तर की और प्रस्थान किया। और यहाँ वर्णन हुआ है कि देवराज इंद्र ने कर्ण की शक्ति को शक्ति का आधार सहन करने के लिए घटोत्कच को उत्पन्न किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय हमें पता चलेगा कि कर्ण के पास एक शक्ति था जो उसको इंद्र के पास से मिला और कर्ण ने उस शक्ति को राख दिया था अर्जुन को मारने के लिए। परंतु कृष्ण ने ऐसा किया कि घटोत्कच की उस रोज घटोत्कच इतना ऐसा लड़ाई कर रहा था कि सब देखा आज सारे कौरव पक्ष विनष्ट हो गए। तो इसलिए घटोत्कच की हत्या के लिए कर्ण ने तो शक्ति को प्रयोग किया। तो यहां इसलिए कहा गया है कि ये कर्ण का शक्ति को आघात सहन करने के लिए इंद्र ने घटोत्कच को सृष्टि किया। ये भी एक बहुत सुंदर बात है। हम जो जैसा कह रहा था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय कृष्ण सबको कैसे रक्षा किए थे पांडवों को। कर्ण के पास ये अस्त्र था बाद में एक समय ये सवाल पैदा हुआ कि कर्ण के पास ये अस्त्र था और कर्ण ने इस अस्त्र को अर्जुन को मारने के लिए रखा। लड़ाई हो रहा था हर रोज, तो कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के प्रति प्रयोग क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर था, उत्तर है कि कृष्ण की माया के कारण कर्ण भूल जाता ये शक्ति उसके पास है और उसको प्रयोग को अर्जुन के साथ जब लड़ाई हो रहा था तो शक्ति को प्रयोग को एकदम उसको याद नहीं करता। ऐसे कृष्ण की माया से कृष्ण भक्तों का रक्षा होता है। बल्कि जब घटोत्कच ने ऐसा लड़ाई करना शुरू किया उस दिन, ऐसा लग रहा था कि सारे कौरव पक्ष आज खत्म हो जाएगा। तब दुर्योधन ने कर्ण को बताया कि तुम किसी प्रकार से इसको हटा दो। कर्ण ने बहुत कोशिश किया था बल्कि घटोत्कच को नहीं मार सका। हालांकि तो अंत में वो शक्ति को घटोत्कच के प्रति अच्छा ये चैप्टर भी बहुत सुंदर है। देखिए तो घटोत्कच का जन्म के पश्चात तो ये चली गई हिडिंबा अपना पुत्र के साथ चली गई। और तो उस समय पांडव ने वहाँ अपना सिर पर जटाएं रख ली और वृक्ष के छाल तथा मृगचर्म पहन लिए। इस प्रकार तपस्वियों का वेश धारण करके वे अपने माता के साथ विचरने लगे। कहीं कहीं माता को पीठ पर चढ़ा लेते तो कहीं धीरे धीरे मौज से चलते। एक बार वे शास्त्र की साधना में लग रहे थे, उसी समय भगवान श्री व्यासदेव उनके पास आए। तो देखिए व्यासदेव का उन्होंने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर मुझे तुम लोगों की ये विपत्ति पहले ही मालूम है, हो गई थी। मैं जानता था कि दुर्योधन आदि ने अन्याय करके तुम्हें राजधानी से निर्वासित कर दिया। मैं तुम लोगों का हित करने के लिए आया हूँ। तुम इस विषादमय परिस्थिति से दुखी मत होना, ये सब तुम्हारे सुख के लिए ही हो रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के लड़के समान ही हैं। फिर भी तुम लोगों की दीनता और बचपन देखकर अधिक स्नेह होता है, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात करता हूँ। यहाँ से पास ही एक बड़ा रमणीय नगर है, वहाँ तुम लोग छिप कर रहो और फिर मेरे आने के बाद जो हो। तो ऐसे तब पांडवों ने एक चक्रा गांव में गया और वहाँ एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। तो एक दिन जब युधिष्ठिर, अर्जुन और नकुल और सहदेव भिक्षा के लिए उन्होंने ब्राह्मण के रूप में उनके घर में रहते थे। तो ब्राह्मण का कार्य है भिक्षा करने का, तो चार भिक्षा करने को गए। तो उस दिन भीमसेन माता के साथ रह गए। तो एक समय कुंती ने सुना घर के अंदर महल से कुछ रोने का आवाज आ रहा है। उस दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन होने लगा। वे लोग बीच बीच में विलाप करते और रोते जाते। ये सब सुनकर कुंती का सौहार्दपूर्ण हृदय दया से द्रवित हो गया। उन्होंने भीमसेन से कहा, बेटा हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं और ये हमारे बहुत सत्कार करते हैं। मैं प्राय ये सोचा करती हूँ कि इस ब्राह्मण का कुछ ना कुछ उपकार करना चाहिए। कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है। देखिए कितना सुंदर उपदेश है। इसलिए मैं कह रहा था कि महाभारत में इतना महाभारत इतना सुंदर उपदेशों में भरा हुआ है। तो मनुष्य को महान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, महान व्यक्ति के लिए कृतज्ञता एक बड़ा गुण होता है। कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे उससे बढ़कर उसका करना चाहिए। अवश्य ही इस ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, यदि हम उसकी कुछ सहायता कर सके तो ऋण हो जाए। भीमसेन ने कहा, माँ तुम ब्राह्मण को दुख और दुख के कारण का पता लगा लो, मैं उनके लिए कठिन से कठिन काम भी करूं। कुंती जल्दी से ब्राह्मण के घर में गई, मानो गाय अपने बंधे बछड़ों के पास दौड़ी गई है। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुंह लटकाकर बैठा है और कह रहा है, धिक्कार है मेरा इस जीवन को, क्योंकि ये सारहीन व्यर्थ दुखी और पराधीन है। जीव अकेला ही धर्म अर्थ और काम का भोग करना चाहता है, इनका वियोग होना ही उसके लिए महान दुख है। अवश्य ही मोक्ष सुख स्वरूप है, परंतु मेरे लिए उसकी कोई संभावना नहीं है। इस आपत्ति से छूटने का न तो कोई उपाय देखता है और न मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भाग ही सकता हूँ। तुम मेरी जितेंद्रिय एवं धर्मात्मा सहचरी हो, देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बना दिया। मैंने मंत्र पढ़कर तुमसे विवाह किया है, तुम कुलीन शीलवती और बच्चों की माँ हो, तुम सती साध्वी और मेरी हितैषिणी हो। राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी आप साधारण मनुष्य के समान शोक क्यों कर रहे हैं? एक न एक दिन सभी मनुष्य को मरना ही पड़ता है, फिर इस अवश्यंभावी बात के लिए शोक क्यों किया जाए? पत्नी पुत्र अथवा पुत्री सब अपने ही लिए होते हैं। आप विवेक के बल से चिंता छोड़िए, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर ये सनातन कर्तव्य है कि वो अपने प्राणों को निछावर करके पति का भलाई करे। इन युग के लिए ये वाणी पत्नी के लिए सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वो अपने प्राणों को निछावर करके पति की भलाई करे। मेरे इस काम से आप सुखी होंगे और मुझे भी परलोक में सुख तथा इस लोगों में यश मिलेगा। मैं आपके धर्म और लाभ की बात कहती हूँ। जिस उद्देश्य से विवाह किया जाता है वो आप पूरा हो चुका। आपके मेरे गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री है। आप इस बच्चों का जैसा पालन पोषण कर सकते हैं वैसा मैं नहीं कर सकती। यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर, मेरे जीवन सर्वस्व, मैं कैसे रहूंगी और इन बच्चों को क्या दशा होगी? यदि मैं अनाथ और विधवा होकर जीवित भी रहूं तो इन बच्चों को कैसे रखूंगी? जब घमंडी और अयोग्य पुरुष इस लड़की को मांगने लगेंगे तो मैं इसकी रक्षा कैसे कर पाऊंगी? जैसे पक्षी मांस के टुकड़े पर झपटते हैं वैसे ही दुष्ट पुरुष विधवा स्त्री पर मैं भला वैसा जीवन कैसे बिता सकूंगी? इस कन्या को मर्यादा में रखना और बच्चों को सद्गुणी बनाना मुझसे कोई कैसे हो सकेगा। आपके वियोग में मैं न रहूंगी और आपकी कथा मेरे बिना इन बच्चों का नाश हो जाएगा। आपके जाने से हम चारों का विनाश हो जाएगा, इसलिए आप मुझे भेज दीजिए। स्त्रियों के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पति से पहले ही परलोक वासिनी हो जाएगा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पुत्र और पुत्री थी, मेरा जीवन आपके लिए निछावर है। स्त्री के लिए यज्ञ तपस्या नियम और दान से भी बढ़कर है अपने पति का प्रिय और ही। मैं जो कुछ कह रही हूँ वो आपके और इस वंश के लिए भी हितकारी है। इस लोक में स्त्री पुत्र मित्र और धन आदि का संग्रह आपत्ति से रक्षा के लिए किया जाता है। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करे, धन खोकर भी पत्नी को रक्षा करे तथा पत्नी और धन दोनों को खोकर भी आत्मकल्याण संपादन करे। ये भी संभव है कि स्त्री को अबद्ध समझकर वो राक्षस मुझे न मारे। पुरुष का वर निर्विवाद है और स्त्री का संदेह ग्रस्त, इसलिए मुझे ही इसके पास भेजिए। अब मुझे करना क्या है? अच्छे पदार्थ भोग लिए, धर्म कर्म कर लिए, पुत्र भी हो चुके, मेरे मरने में भला दुख ही क्या है? मेरे मर जाने पर आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष के लिए अधिक विवाह अधर्म नहीं है और स्त्री के लिए तो महान अधर्म है। ये सब सोच विचार कर आप मेरी बात मानिए और इन बच्चों को रक्षा के लिए आप स्वयं रह जाइए और मुझे इस राक्षस के पास भेजिए। स्त्री के ऐसे कहने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी छाती से लगा लिया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी। माँ बाप की दुख भरी बात सुनकर कन्या बोली, आप दोनों दुखार्त होकर क्यों अनाथ के समान रो रहे हैं? देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक ना एक दिन छोड़ देंगे, इसलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? लोग संतान इसलिए चाहते हैं कि वो हमें दुख से बचाए। इस अवसर पर आप लोग मेरा सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते? आपको परलोकवासी हो जाने पर मेरे ये प्यारा प्यारा छोटा भाई नहीं बचेगा। माँ बाप और भाई की मृत्यु से आपकी वंश परंपरा ही उच्छेद हो जाएगा। जब कोई नहीं रहेंगे तो मैं भी तो नहीं रह सकूंगी। आप लोगों के रहने से सबका कल्याण हो जाएगा। मैं ही राक्षस के पास जाकर इस वंश की रक्षा करूंगी, इसे मेरा लोक परलोक दोनों बनेंगे। कन्या की ये बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगी। कन्या भी बिना रोए न रह सकी। सबको रोने देखकर नन्हा सा ब्राह्मण शिशु मिठास भरी तोतली बात वाणी से गाने लगा, पिताजी माताजी बहन मत रो। प्रत्येक के पास जा जाकर वो एक कहने लगा। उसने एक तीन का उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। बच्चे को इस बात से उस दीक्षित के घर में भी तनिक प्रसन्नता प्रस्तुत हो उठी। कुंती ये सब कुछ देख सुन रही थी। वे अपने को प्रकट करने का अवसर देखकर पास चली गई और मुर्दों पर मानो अमृत की धारा उरेलते हुए बोली, ब्राह्मण देवता, आपकी दुख का क्या कारण है? उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मैं मिटाने का चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपस्विनी, आपकी बात सज्जनों के अनुरूप है, परंतु मेरा दुख वो ब्राह्मण ने बताया कि वहाँ बप नामक एक राक्षस है जो बहुत उत्पात करता था, आकर बहुत आदमी को मार डालता था। तो उसके बाद उन्होंने उसके साथ एक शर्त किया नगरवासियों ने कि एक इस बलवान राक्षसी के लिए एक गाड़ी, परंतु मेरा दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही एक बक नाम का राक्षस रहता है, उस बलवान राक्षस के लिए एक गाड़ी, अन्न तथा दो भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है उसे भी वो खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ पे ये काम करना पड़ता है, परंतु इसकी बारी बहुत वर्षों की बाद आती है। जो उससे छूटने का यत्न करते हैं वो उनके सारे कुटुंबों को खा जाता है। जहां का राजा, यहाँ के राजा यहाँ से थोड़ी दूर बेत्र की गृह नामक एक स्थान में रहता है, वो अन्नाई हो गए हैं और इस विपत्ति से प्रजा की रक्षा नहीं करता। आज हमारे बाड़ी आई गई है, मुझे उसके भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना पड़ेगा। मेरे पास इतना धन नहीं है कि किसी को खरीद कर दे दूं और अपने सगे संबंधियों को देने की शक्ति नहीं है। अब अपने छुटकारे के लिए उपाय न देखकर मैं अपने सारे कुटुंब के साथ जाना वहां जाना चाहता हूं। वो दुष्ट सभी को खा डालेगा। कुंती ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप न डरे और न शोक करें, उससे छुटकारे का उपाय मैं समझ लूं। आपके तो एक पुत्र, एक ही पुत्र और एक ही कन्या है। आप दोनों में से किसी का जाना भी मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे पांच लड़के हैं, उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, हरे हरे, मैं अपने जीवन के लिए अतिथि का हत्या नहीं कर सकता। देखिए यहाँ हम क्या देखते हैं कि कितने उदार और निष्ठार्थ उस समय के लोग थे। पति पत्नी को बचाने का चिंता कर रहा सोचता था, पत्नी सोचा कि मैं चला जाऊं तो इससे ये भला होगा। लड़की भी बोलने लगी कि एक दिन ना एक दिन तो हमको तो निकाल ही दिया जाएगा घर से और किसी के पास, तो क्यों मैं न चले जाए ताकि आप सब रक्षा हो जाए। तो कुंती जब बोला कि मेरा पुत्र जाएगा, तो ब्राह्मण का उसका रेस्पॉन्स कैसा हुआ, ये कह क्या बात आप कह रहे हैं, अपने आप को रक्षा करने के लिए अपना अतिथि को मार डालूंगा, इससे तुम कितना पाप होगा। अवश्य ही आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मण के लिए अपने पुत्र का भी त्याग करना चाहती है। मुझे स्वयं अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। आत्मबध और ब्राह्मण बध के विकल्पों में मुझे तो आत्मबध ही श्रेयस्कर जान पड़ता है। ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं, अनजान में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा अपने को नष्ट कर देना उत्तम है। मैं अपने आप तो मरना चाहता नहीं, दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। चाहे कोई भी हो जो अपने घर आया, शरण में आया, जिसने रक्षा की याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी निशंसता है। आपत्तिकाल में भी निंदित और क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ मर जाऊं ये श्रेष्ठ है, परंतु ब्राह्मण वध की बात तो मैं सोच भी नहीं कर सकता। कुंती ने कहा, ब्राह्मण, मेरा भी ये दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु बात ये है कि राक्षस मेरे बलवान मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकता। वो राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी अपने को छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। अब तक ना जाने कितने बलवान और विशालकाय राक्षस इसके हाथों मर गए हैं। एक बात है, इसकी सूचना आप किसी को ना दें, क्योंकि लोग ये विद्या जानने के लिए मेरे पुत्र के संग करेंगे। कुंती की बात से ब्राह्मण परिवार की बड़ी प्रसन्नता हुई। कुंती ने ब्राह्मण के साथ जाकर भीमसेन से कहा कि तुम ये काम कर दो। भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता की बात स्वीकार कर ली। जिस समय भीमसेन ने वो काम करने की प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा लेकर लौटे। युधिष्ठिर ने भीमसेन के आकार से ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने एकांत में बैठकर अपनी माता से पूछा, माता, भीमसेन क्या करना चाहते हैं? ये उनकी स्वतंत्र इच्छा है या आपकी आज्ञा? कुंती बोली, मेरी आज्ञा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आपने दूसरे के लिए अपने पुत्रों को संकट में डालकर बड़े साहस का काम किया है। कुंती ने कहा, बेटा, भीमसेन की चिंता मत करो, मैंने विचार की कमी से ऐसा नहीं किया है। हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में आराम से रहते हैं, उससे उदीन होने का यही उपाय है। मनुष्य जीवन का सफलता इसी में है कि वो कभी उपकारी के उपकार को न भूले। ये भी और एक सुंदर उपदेश है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वो कभी उपकारी के उपकारों को न भूले, उपकारी के उपकार को न भूले, उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार कर दो। भीमसेन पर मेरा विश्वास है, पैदा होते ही वो मेरी गोद से गिरा था, उसके शरीर से टकरा कर चट्टान चूर चूर हो गई। मेरा निश्चय विशुद्ध धार्मिक है, इससे प्रत्युपकार तो होगा ही, धर्म भी होगा। युधिष्ठिर बोला, माता, आपने जो कुछ समझ बूझ कर किए हैं वो सब उचित है, अवश्य ही भीमसेन राक्षस को मार डालेंगे, क्योंकि आपके हृदय में ब्राह्मण की रक्षा के लिए विशुद्ध धर्म भाव है। किंतु ब्राह्मण से अवश्य कह देना चाहिए कि नगर निवासियों को ये बात मालूम न होने पावे। तो ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही बात करते हैं। ऐसे पढ़ने में कैसा होता है? ये अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, ये बहुत डिटेल है और कितना सुंदर उपदेश भी मिल जाता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? हाँ, तो क्या हुआ? मतलब क्या है? सबकी कृष्ण की कृपा से ही है। हरे कृष्ण।
ओके, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।
आपने कहा कि मनुष्य का जीवन, तो
अपने कैसे आएगी कृतज्ञता का मतलब क्या होता है? आभारी रहना, जो भला कुछ भलाई किया है वो याद रख के उसको आभारी रहना, और उसके लिए और कुछ उससे भी बढ़कर कुछ करने का चेष्टा कर। ये
मन में कुछ कामना कम गुस्सा होता है, यहाँ पे कभी घर साफ सफाई घर से कुछ गंदा
तो महाभारत पढ़ो और पढ़ के सहनशील बनो, इसलिए महाभारत पढ़ना चाहिए।
क्योंकि सही दृष्टांत से हमें सही शिक्षा मिली। और असली बात है कि भगवान को भक्त बने। देखो जब भगवान को भक्त बनकर तुम जहां भी रहोगे वही भगवत धाम बन जाए, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। ऐसा लगता है कि पांडव को कष्ट हो रहा है, बल्कि जब महाभारत सुनते हो या पढ़ते हो तब लगता है कि पांडव को कोई कष्ट हो रहा है, वो मजे में है, राक्षसों को मार रहा है और महान ऋषियों का साथ संग हो रहा है। जब पांडव ने ऐसे थे वन में जब थे और निर्वासन में जब भी थे वनवासी होकर, तो बहुत सारे ब्राह्मणों ने ऋषियों ने उनके साथ रहा करते, जैसे तुम यहाँ हो ऐसा लग रहा है। सिनेमा जी में जाने में अच्छा लगेगा या यहाँ रहने में अच्छा लगेगा? तो जो आदमी को सिनेमा देखने का अवसर मिल रहा है वो बोलेगा देखो ये कैसे आदमी है, कितना अच्छा मूवी आया है वो देखने नहीं जा रहा है, उसका जीवन एकदम बकवास है। बल्कि तुमको कैसा लग रहा है? जहाँ भगवान का वाणी का चर्चा होता है वहाँ उस जगह आनंद से भर जाता है। तो पांडव के लिए आनंद से ही सब जगह भरा हुआ है।
It seems to me that 5,000 years ago, slave trade was quite openly available, because Brahmin is saying that he doesn't have enough money to buy somebody to send it to the Rakshas. So slave trade was prevalent in that.
What's
the
problem? Yes?
Huh?
प्यार से भगवान को व्यासदेव भगवान का अवतार कहते हैं। व्यासदेव भगवान का अवतार है, शक्तावेश अवतार। ओके थैंक यू ऑल वेरी मच। गौर से नमस्ते। संध्या वाला की कितना हम तो ऐसे ट्रैफिक हो
यार,
कितना
मावल
या मावल तो काल कैसे लग रहा है? महाभारत महाभारत पढ़ रहे हो तुम भी? भगवत गीता पढ़ रही, भगवत गीता महाभारत का ही पता था। हरे कृष्ण गौर श्री महाराज।